भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिमानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रतिष्ठाय श्रीमते वसुनाय बापूजी नामिने नमस्ते वसुनाय भक्ति पात्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सर्वप्रकार श्री राधे। आप सबों का आज के इस बहुत ही अद्भुत कीर्तन और सत्संग में स्वागत है। हम जिस तरह से कल एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन कर रहे थे, वो महत्वपूर्ण विषय आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। कृष्ण किसी को कुछ भी दे सकता है, ये कृष्ण की मर्जी है। लेकिन एक चीज वो बहुत ही चॉइस से किसी को देता है, जो वो सबको नहीं दे सकता। पैसा वो किसी को भी दे सकता है, नाम शोहरत फेम किसी को भी दे सकता है, नॉलेज किसी को भी दे सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज जो वो बहुत दुर्लभ किसी को देता है वो है अपनी भक्ति। और वो भक्ति वास्तव में गुरु की कृपा से मिलती है। जब तक गुरु नहीं चाहते कि इस जीव का भला करना है, जब तक वो अपनी कृपा दृष्टि से हमारी तरफ देखते नहीं, तब तक भगवान की कृपा का जो माध्यम है वो गुरुदेव होते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस तरह से बादलों से बारिश तो होती है, बारिश कहां से होती है? बादलों से। लेकिन क्या ये बादलों के पास अपना पानी होता है? उनके पास पानी आया कहां से होता है? समुद्र से एवेपोरेट होके वो क्लाउड्स में स्टोर होता है, और समुद्र से एवेपोरेट कौन करता है? सूर्य। सनलाइट उस पानी को बादलों तक पहुंचाता है, और फिर बादल उस पानी को बरसाते हैं। ऐसे ही जो गुरु की, जो कृष्ण की कृपा हो, वो गुरु के माध्यम से जीव तक पहुंचते हैं। वो गुरु होते हैं जो कृष्ण की कृपा को लेते हैं और उस कृष्ण की कृपा को औरों तक पहुंचा जाते हैं। इसलिए गुरु को कृष्ण कृपा मूर्ति भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? जो कृष्ण की कृपा की मूर्त है। मतलब अगर भगवान की कृपा को साकार रूप देना हो, भगवान की कृपा का अगर साकार रूप देखना हो कि भगवान की कृपा किसे कहते हैं, तो फिर वो साकार रूप गुरु का होता है। नहीं तो जीव जो है वो इतने अंधकार में डूबा हुआ है। हम सबसे पहला श्लोक जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ओम अज्ञान तिम्रांतस्य ज्ञानांजन श्लाकया। मतलब हमारा जो जन्म हुआ वो अंधकार में ही हुआ सबका। जन्म से हमें किसी चीज के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। फिर हमें दुनिया का ज्ञान देने वाले टीचर मिले, जिन्होंने हमें भौतिक शिक्षा दी, मटेरियल एजुकेशन जो हमें प्रदान की गई, जिससे इस शरीर को चलाया जाता है, जीवन का निर्वाह किया जाता है। उसके लिए हमें कोई टीचर मिले तो शरीर की व्यवस्था हो गई कि पढ़ाई कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, या कोई बिजनेस सीख लिया, उस बिजनेस को हमने अच्छा सेटअप कर लिया। अब इससे हमारा क्या चल रहा है? बोलिए बोलिए। शरीर चल रहा है, हमारा जीवन चल, शरीर चल रहा है का मतलब क्या है? खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ये हमारा शरीर चल रहा है। इसलिए शरीर का, शरीर की आंखें तो खुल गई, तभी तो हम सही अपॉर्चुनिटी, सही करियर ग्रोथ, सही डायरेक्शन, इन सब के बारे में सोच सोच कर आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन आत्मा की आंखें अभी भी बंद है। शरीर की आंखें खुल गई, कोई मिल गया ये बताने वाला कि किस तरह से आपको आपके जीवन में ये पढ़ाई काम आएगी, ये करियर काम आएगा, टीचर्स मिले, प्रोफेसर्स मिले, जिन्होंने आपको हेल्प किया, आप पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े, डिग्री ली, बिजनेस सेटअप किया, सब कुछ हो गया। अब आपका शरीर तो ठीक से चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी आत्मा अंदर से दुखी है। इंसान की आत्मा अंदर से दुखी है, क्योंकि आत्मा की आंखें खोलने वाला हमारे अंदर जो वास्तव जीव है। इसीलिए कहा ओम अज्ञान इंद्रान, उसे खोलने वाला जब तक जीवन में नहीं आता तब तक वो जो खुशी है वो अंदर से नहीं आती। देखिए दो प्रकार के सुख हैं, एक सुख जो बाहर से आता है, एक सुख जो बाहर से। इस समय आपको गर्मी लग रही है, मान लीजिए लग रही है, और ठंडी ठंडी हवा आने लगे इसी चीज, तो ये सुख कहां से आया? या किसी ने आपको ठंडा ठंडा शरबत पिलाया, मैंगो शेक पिलाया, तो ये सुख कहां से आया? बाहर से आया। आपने पिया कहा, आहाडा को सुख हुआ, बहुत अच्छा, ये सुख आपको बाहर से मिला। एक सुख है जो बाहर से आता है और एक सुख है जो अंदर से आता है। अभी जो हमने कीर्तन किया, उस कीर्तन में जो आपको आनंद आ रहा था, जो खुशी मिल रही थी, वो आपको अंदर से सुख मिल रहा था। जो आप कृष्ण कथा सुनते वक्त मुस्कुराते हो, जो आपका मन गदगद हो जाता है, कृष्ण की बातें सुनते सुनते आपके रोमांच रोम खड़े हो जाते हैं, रोम में कंपन आता है, गूजबम्स आते हैं, जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, वो सुख कहां से आया? अंदर से आया। और बाहर का सुख याद रखिए, बाहर का सुख पाने के लिए खर्च करना पड़ता है, अंदर का सुख फ्री है। बाहर का सुख ज्यादा समय तक चलता भी नहीं है। अभी आपने मैंगो शेक पी लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगी, फिर गर्मी लगी। अभी आपने, आप दिन में 3 बार खाना क्यों खाते हो? अच्छा, 3 बार भी नहीं खाते हो, शाम को कभी भेलपुरी खाते हो, कभी छोला डबल खाते हो, कभी इडली सांभर खाते हो, क्योंकि हमारा शरीर बार बार हमसे कुछ ना कुछ मांगता है। बाहर से जब तक उसे कुछ ना दिया जाए तब तक वो सुखी नहीं होता। और जो कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा का सुख है, वो अंदर से आता है। बाहर के सुख के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, समझिए, मतलब आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी और उसमें सुख मिलेगा इतना। इंसान अपनी पूरी उम्र धन संग्रह करते करते, पैसा जमा करते 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 एक फ्लैट खरीद लेता है, उसकी सारी कमाई चली गई, या एक शादी करवा लेता है। और आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, आजकल की शादियां भी फिल्म के सेट्स की तरह होती है। जब तक लड़का और लड़की गाना गाते गाते, डांस करते करते ना आए, और कुछ धमाकेदार एंट्री ना हो, तब तक फिर शादी शादी कहां है? एक शादी में, एक उम्र में इंसान ने पैसा जमा किया, और एक शादी में, और वो शादी होती कितने समय की? चलो ज्यादा से ज्यादा एक दिन मेहंदी संगीत हुआ, एक दिन रिंग सेरेमनी हुई, और एक दिन वेडी और रिसेप्शन हो गई। 3 दिन से ज्यादा तो कोई नहीं करता। मतलब इतना धन जमा किया और 3 रात में, उसमें भी कोई ना कोई ऐसे फूफा होंगे, बुआ होगी, मौसी होगी, मौसा होंगे जो आके कहेंगे कि असा के थदो फुल्को खा रहा हो, हेडे हेडो खर्चो कयो डेकोरेशन थे, पर असा के तो थदो फुल्को मिले। तो कोई ना कोई आकर अपनी गिलाएं शिकवाएं करेगा। मतलब जीवन भर जो पुरुषार्थ किया, मेहनत की, परिश्रम किया, उसका सुख आपको एक ही रात में समाप्त, बस हो गया। आप सोचिए कि आप जब घर पर भी भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसके लिए मेहनत कितनी लगती है। पहले सबसे पहले सब्जियां लेके आओ, चलो लेके आओ का भी सुख आजकल है, आप सीधा ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो, स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर दो, घर पर आकर रामू काका लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर काटो, उसके बाद फिर उसे उबालो, उसके बाद फिर बताते जाओ क्या है, उसे उसमें जीरा डालो, उसमें हल्दी डालो, हींग डालो, और फिर उसमें टमाटर डालो, फिर थोड़ी देर घुमाओ, फिर कुकर बंद कर दो, फिर थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद आओ, और इतनी गर्मी में पसीने अलग निकल रहे हैं, हाँ बीच में किसी का फोन आएगा, हाँ ऐसे करते 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 एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा किचन में, तो फिर सारा टाइम पकड़ के मान लीजिए दो घंटे लगे सब्जियों से लेकर लाने से लेकर टेबल तक पहुंचने में। खाने में कितनी देर लगी, 10 मिनट यहां खाया, और वो भी खाते खाते या तो ध्यान मोबाइल में था तो टीवी देख रहे थे, पता ही नहीं चला खाया क्या। इतनी मेहनत की लेकिन वो सुख कितनी देर में चला गया, 10 मिनट। ये संसार का सुख ऐसा ही है, ये मेहनत बहुत कराता है, परिश्रम बहुत कराता है, खर्चा भी बहुत कराता है, लेकिन आता है और चला जाता है। एक इंसान ने बहुत मेहनत करके बड़ा घर लिया और उस बड़े घर का बहुत शानदार इंटीरियर डेकोरेशन भी किया, वियतनाम से मार्बल मंगाया, पर्शिया से कारपेट मंगाया, इटली से क्या आता है कुछ भी मंगाया, हर दुनिया के कोने से कीमती चीज मंगाकर वहां अपने घर में रख दी। लेकिन ये सब करने के बाद भी एक दो महीने में ही अब वो घर वैसा यूज्ड हो जाता, फिर कहीं कोई और प्रोजेक्ट आता है तो ऐसा लगता है वहां भी नहीं। तो ये आप देखिए कि कितनी मेहनत कराता है सुख इंसान से, कितना परिश्रम कराता है कि आओ मुझे पाओ, मैं तुम्हें सुखी करूंगा। आपके सामने वस्तु उपस्थित रहती है या व्यक्ति उपस्थित रहता है, वो आपको आप अपनी ओर खींचता है कि आओ मुझे पाओ, मैं सुखी करूंगा। जैसे ही पा लेते हो तो फिर वैसा का वैसा, अरे अब कुछ और, अब मन कुछ और ढूंढ रहा है, कुछ और चाह रहा है, कुछ और पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सुख कहां से आ रहा है बोलिए, बाहर से आ रहा है। और अंदर का सुख, यहां बैठे हो, कोई खर्चा नहीं कर रहे, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, आपको यहां आने में सुख मिलता है तभी तो आते हो, कहीं कोई आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आता है, कहीं कोई मन को एक प्रकार की शांति मिलती है, एक तृप्ति होती है। इसलिए कृष्ण कथा और कृष्ण नाम और कृष्ण कीर्तन में आते हो, अपना समय निकाल कर आते हो और आते हो आते हो आते हो और आते रहोगे। क्यों? क्योंकि यहां आपको अंदर का सुख मिल रहा है। कृष्णा 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 कृष्णा। देखिए, कोई भी व्यक्ति सुख से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि सुख का अनुभव करना ये हमारा स्वभाव है। आनंद मयो अभ्यासात, आनंद का आभास करना, प्लेजर को फील करना, ये हमारा बेसिक नेचर है। सिर्फ फर्क ये है कि एक व्यक्ति उस सुख को बाहर से अंदर ले जा रहा है, इसलिए उसको पूरे दुनिया का भी सुख कम लगता है। इसलिए गुरु ग्रंथ में कहा गया, भुखियां भुख न मिट्टी जे बन्ना पुरिया पार, कि उसकी भूख मिट्टी ही नहीं है, चाहे पूरे दुनिया का सुख उसे मिल जाए फिर भी उसको लगता है कि मैं सुखी नहीं हूं। भुखियां भुख न मिट्टी, क्योंकि हमारी इंद्रियों को शास्त्रों में अग्नि के समान बताया है, आग में जो वस्तु डालो वो जलकर राख हो जाती है। ऐसे इंद्रियों को जितना दे दो उसको उतना कम लगता है, वो खत्म कर देती है। आंखें देखते नहीं थकती, कान सुनते नहीं थकते, जीभ चखते नहीं थकती, हमारी प्रत्येक इंद्री इतनी प्रबल है कि आप उसमें जो डालो आहुति बन जाती है। और पता है, इस इंद्री को जितना दो ना, वो घी का काम भी करती है, जैसे आग और भड़कती और तेज होती है, जैसे उसमें घी पड़ता है, ऐसे हमारी इंद्रियों को आप जितना देते जाओ इसको उतना कम लगता है और भड़कती है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे करते करते इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है, ये बिकम्स लाइक अ मैड पर्सन। एक उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत छोटी उम्र में बच्चे जो है वो सारे सुख देख लेते हैं, पैसों का सुख वो देख लेते हैं, क्योंकि आजकल पैसे कमाने के जरिए बहुत हो गए हैं, फिर आजकल फेमस होने के भी जरिए बहुत हो गए हैं, फेमस फेम भी वो जल्दी देख लेते हैं। और फिर दूसरी ऐसी बातें हैं जो आज आप जानते हैं कि बच्चे खासकर मुंबई के किस तरह से ड्रग्स के रास्ते पर, नशे के रास्ते पर चले जाते हैं, तो वो भी एक ऐसी चीज वो देख लेते हैं। मतलब शरीर का हर सुख वो बहुत जल्दी देख लेते हैं। अब ये होता है कि उनकी जो लाइफ है वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाने लगती है। इस शरीर को आप जितना सुखी करोगे उतना ये कहेगा कम है, मजा नहीं आया, और दो। अब और लाए कहां से, क्योंकि जो एक बार व्यक्ति ने कर लिया उसको अब उसमें मजा नहीं आ रहा, या तो वो उसी चीज को ज्यादा करेगा। जैसे पहले इंसान जब ड्रिंक करना शुरू करता है तो वो एक पैक से करता है, अब उसे उसमें मजा कम आने लगा तो वो उसे बढ़ाने लगता है, बढ़ाने लगता है, बढ़ाने लगता है, बढ़ाने लगता है, अंत में ऐसी हालत हो जाती है कि वो बीमार पड़ जाता है। अब वो कितना भी पी ले उसको उसमें मजा नहीं आ रहा। मैंने कई बार लोगों से पूछा, तो तुम ये पीते हो तो तुम्हें कुछ होता है? कहते नहीं नहीं हमें तो कुछ इसमें कुछ नहीं होता। मैंने कहा फिर क्यों पीते हो? कहा सब पी रहे इसीलिए हम भी पी रहे। अब उनको इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि किसी पार्टी में अगर हम नहीं पिएंगे तो लोग समझेंगे अरे ये पी नहीं रहा, ये कोई पुराने ख्यालों का व्यक्ति है लगता है। ये जो बाहर से आने वाला सुख होता है ना, ये हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अब जो अंदर से आने वाला सुख है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, अच्छा चलिए अब आपको इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी बताते हैं, एक बाहर से आने वाला सुख और एक अंदर से आने वाला सुख। जब आपके भीतर में कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाती है, आप कृष्ण की बातों में सुख लेने लगते हैं, फिर जब आप बाहर भी परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन ये होता है कि कहीं ना कहीं कृष्ण की सेवा हो रही है, तो बाहर से आने वाला सुख भी आपको सुख देता है और अंदर से आने वाला सुख भी सुख देता है, और हमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स दिया जा रहा है। कृष्ण भक्ति एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। यहां कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अर्जुन बस बैठ जा और मेरा नाम ले, आंखें बंद कर दे तो सुखी हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध बोलिए ना लड़वाया, युद्ध लड़वाया कृष्ण ने, क्योंकि पहले अर्जुन युद्ध नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि उसे अंदर से सुख नहीं मिल रहा था, वो समझ ही नहीं रहा था कि मैं ये युद्ध किस लिए लड़ूं। लेकिन जब भगवत गीता सुनी, समझी इस बात को, एक बहुत ही समझने वाली बात है। जब उसने कृष्ण से गीता सुनी तो उसके अंतर आत्मा से भी उसे सुख मिलने लगा। अब वो बाहर जो करे वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण के लिए करे, तो बाहर जो करने लगा उसमें भी सुख मिलने लगा, फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं मिली। फिर आप बाहर पैसा खर्च भी करोगे तो उससे भी सुख मिलेगा, फिर आप बाहर पैसा बहुत कमाओगे भी, करोड़ों रुपए कमा लोगे, उससे भी सुख मिलेगा, क्योंकि अब आपका जीवन का जो केंद्र बन चुका है वो कृष्ण बन चुका है, फिर कुछ भी माया नहीं है, सब कृष्ण है। माया कब तक माया है? जब तक वहां कृष्ण नहीं है, जब तक आप कृष्ण को भूल चुके हो। माया का डेफिनेशन शास्त्रों में क्या दी गया, माया पैसे को नहीं कहते। लोग समझते हैं माया मतलब पैसा, कोई समझता है माया मतलब स्त्री को कहते हैं, वुमेन को कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। माया का जो डेफिनेशन दिया गया है शास्त्रों में वो ये दिया गया है, माया वो है जो नहीं है, माया वो है जो वॉट इज नॉट, जो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। कैसे? उदाहरण, जब तक उदाहरण नहीं दूंगा तब तक ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक मिरर के सामने एक एप्पल रखा मैंने, तो आपको कितने एप्पल नजर आ रहे हैं? एक असली है और एक उसका रिफ्लेक्शन है, परछाई है। एक असली है जो नजर आ रहा है और एक उसकी परछाई है। जो परछाई है क्या आपको वो दिख तो रहा है, लेकिन क्या वो है? नहीं। होते हुए भी वो नहीं। माया इज व्हाट इज नॉट, जो होते हुए भी ना हो वो माया है। और इस जगत को, इस जगत को परछाई की तरह देखा जाता है, क्योंकि यहां आप कुछ भी पाने की कोशिश करो वो परछाई की तरह है, आपके हाथ में आने वाला नहीं है। अब समझिए कि यही माया कृष्ण कैसे बन सकती है। समझिए इस बात को, जब हम सूर्य शैडो, आप इमेजिन कीजिए कि आप सूरज को पीठ लेकर चल रहे हो, तो आपको शैडो कहां नजर आता है? आपके आगे। अब आप किसके पीछे चल रहे हो? शैडो के। जितना आप शैडो के पीछे चलोगे उतना शैडो आपसे आगे आगे चलेगा, वो कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। अब आपने चलते चलते अपना फेस जो है वो सूरज की तरफ कर लिया, अब आप सूरज की दिशा में चल रहे हैं, अब शैडो कहां आएगा? पीछे। अब पीछे कौन चल रहा है और आगे कौन चल रहा है? आप। अब आप शैडो के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि शैडो आपके पीछे चल रहा है। ऐसे ही जब हम इस दुनिया में रहते हुए अपना चेहरा, मतलब अपना, अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाएं, अपनी भावना, अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ, ये सब कुछ कृष्ण की दिशा में करने लगे, तो जो कुछ भी इस दुनिया में परछाई है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो सब खुद ब खुद हमारे पीछे आने लगता है। क्योंकि अब हम किसकी दिशा में चल रहे हैं? कृष्ण की दिशा में। तो शैडो कहां हो गया? पीछे। अब हम उसके पीछे नहीं चल रहे, बल्कि दुनिया हमारे पीछे, दुनिया की वस्तुएं हमारे पीछे आ रही है। एक बात याद रखिए, एक वृंदावन में संत थे, वृंदावन के संत अचानक बैठे थे और ठाकुर जी के माला में से एक फूल नीचे गिरा और वो संत खुशी से झूम पड़े, खा वाह वाह वाह, ठाकुर जी ने आज बड़ी लीला की है, चलो इसी बात पे उत्सव करते हैं, इसी बात पे उत्सव करते हैं। अरे कहां कहां से लोग आए, कहां से धन आया, कहां से लोग खाकर चले गए, कुछ पता नहीं चला। अब इसमें अंतरात्मा का भी सुख है और बाहर का भी सुख है। जब आप कृष्ण प्रसाद खाते हो, वो खाते हो जो कृष्ण को भोग लगाया है, वो सुख कहां से आ रहा है? बोलिए, बाहर से आ रहा है। लेकिन आपको तृप्ति सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी मिल रही है। इसलिए फिर वो खाना इंद्र तृप्ति नहीं है, वो खाना माया नहीं है, वो खाना भी कृष्ण है। जो चीज कृष्ण में लग गई, फिर वो माया नहीं, वो सब कृष्ण बन जाते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया में, जैसे हमने वो कथा सुनी थी ना कि जिसको वो मणि छूता है तो वो मणि से सोना बन जाता है, ऐसे ही आप जिस चीज को कृष्ण से छू लेते हो वो चीज भी कृष्ण बन जाती है, वो भी कृष्ण बन जाती है। फिर अच्छे कपड़े पहनना भी माया नहीं है, अच्छे घर में रहना भी माया नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपने किसमें कर दिया है, अब कृष्ण में कर दिया। इसीलिए अर्जुन पांडवों को तो जाना था सब छोड़ के, लेकिन कृष्ण ने बोला मैं तुमको राजा बनाऊंगा, मैं तुमको राज्य प्रदान करूं, मैं चाहता हूं तुम राज करो, तुम राज गद्दी पर बैठो, तुम्हें सारे राज्य के सुख मिले, मैं चाहता हूं। ये कृष्ण की इच्छा थी, इसीलिए तो अर्जुन से युद्ध करवाया, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि मेरे भक्त जो है वो सब कुछ जिसको छूते हैं, जहां जाते हैं, जिससे मिलते हैं, सब कुछ कृष्णमय कर देते हैं। महाप्रभु जहां जाते, चैतन्य महाप्रभु वहां जाते ही सब कृष्ण नाम लेने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए आइए आज के इस सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं।